आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति कुमारी है, मैं जयपुर से हूँ एंड आई एम डूइंग माय बीए फ्रॉम वनस्थल यूनिवर्सिटी। और आज मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इंडिया कैन टीच अस, जिसको कि मैक्स मुलर ने लिखा है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले हम अबाउट द लेसन देखेंगे। द प्रेजेंट पीस हैज बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये जो आपका चैप्टर है ये कई सारे कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स से लिया गया है। और व्हाट इंडिया कैन टीच अस का बेसिकली मतलब है कि क्या भारत हमें सिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर द ग्रेट एडमायर ऑफ इंडियन कल्चर हिस्ट्री एंड लिटरेचर डिलीवर्ड देम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वेयर ही पोर्ट्रेट इंडिया स्पेशली द वैदिक इंडिया एज एन एपिटोम ऑफ वर्चुअसिटी एंड मोरालिटी। इन दिस एक्सट्रैक्ट Max Muller analyzes the greatness of India and maintains that it has solutions for many problems that confront mankind and cites various examples in support of his view. अब Max Muller जो थे वो Indian culture, हमारे culture के बहुत बड़े admirer थे। उन्हें हमारा culture बहुत पसंद था और हमारे culture के साथ साथ हमारे यहाँ की history, हमारे यहाँ का जो literature है और literature के साथ साथ culture, history, उन्हें सब कुछ बहुत पसंद था हमारे देश का। और हमारे इसी साहित्य को, हमारे इसी प्राचीनता को और कल्चर को उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी दर्शाया था और बताया था। और स्पेशली उन्हें हमारे यहाँ का वैदिक इंडिया, जो वैदिक पीरियड था, वो बहुत ही ज्यादा पसंद था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये तक बताया था कि कैसे भारत में कई दिक्कतों का कैसे सोल्यूशंस निकाला जाता है, कैसे हल निकाला जाता है। और इसको समझाने और बताने के लिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, यानी कई सारे उदाहरण भी दिए हैं। अब हम थोड़ा सा मैक्स मुलर के बारे में देखते हैं। फ्रेडरिच मैक्स मुलर उनका पूरा नाम था। 1823 से 1900 यानी 1823 में उनका जन्म हुआ था और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अ जर्मन बॉर्न फिलोलॉजिस्ट, वो एक फिलोलॉजिस्ट थे एंड ओरिएंटलिस्ट, उसके साथ साथ एक ओरिएंटलिस्ट भी थे। लिव्ड एंड स्टडीड इन ब्रिटेन एंड बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही ट्रांसलेटेड, एडिटेड एंड कमेंटेड ऑन न्यूमरस संस्कृत टेक्स्ट्स। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं करी और उसके बाद वो प्रोफेसर बने थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस के। और इसके साथ साथ वो ट्रांसलेट करते थे और एडिट भी करते थे कई सारे संस्कृत के टेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है। इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोर्ड विद ऑल द वेल्थ पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन बिस्टो इन सम पार्ट्स अ वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ आई शुड पॉइंट टू इंडिया। अब यहाँ वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी एक ऐसे देश पे इशारा करना हो, अगर ऐसे देश को चुनना हो जो कि बहुत ज्यादा ही धन प्रदान करता है, जिसमें बहुत शक्ति और बहुत सुंदरता है और वहाँ का जो नेचर है यानी जो पर्यावरण है और प्रकृति है वो मानो ऐसा है कि जैसे जन्नत ही पाली हो धरती पे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो इंडिया को चुनेंगे, वो भारत को चुनेंगे। इफ आई वर आस्क्ड अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन माइंड्स हैव फुल्ली डेवलप्ड सम ऑफ इट्स चॉइसेस गिव हैज मोस्ट डीपली पॉन्डर्ड ऑन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड हैज फाउंड सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑफ देम व्हिच वेल डिजर्व द अटेंशन इवन ऑफ दोस हु हैव स्टडीज प्लेटो एंड कांट I should point to India। अब यहाँ पर इमानुअल कांट की बात हुई जा रही है जो कि बहुत ही मशहूर फिलोसोफर थे। और इसके साथ साथ मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसा देश चुनना हो जहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिशाली लोग रहते हैं, जो कि अपनी दिक्कतों को और सारी दिक्कतों का बहुत ही अच्छा हल निकालते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे हालात में भी वो इंडिया पे ही इशारा करेंगे, भारत को ही चुनेंगे। And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and one of Semitic race, the Jewish, may draw the corrective which is most wanted in order to make our inner life more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life not for this life only but a transfigured and eternal life, again I should point to India। अब वो यहाँ खुद से पूछते हैं कि अगर मुझे खुद से पूछना पड़े कि सबसे अच्छा साहित्य कहाँ का है, तो मैं जो कि यहाँ यूरोप के ग्रीक्स एंड रोमन्स के बारे में पढ़ता हूँ, जानता हूँ, उसके बावजूद सबसे अच्छा साहित्य अगर मुझे सुनना पड़े तो मैं वहाँ का चुनूंगा जहाँ का सबसे अच्छा ह्यूमन लाइफ दर्शाया गया, सबसे अच्छे ह्यूमन लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है उनको कैसे सुलझाया जाए बताया गया है, उस साहित्य को चुनूंगा जो कि अगेन भारत देश का होगा। अब अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, आई नो यू विल बी सरप्राइज टू हियर मी से दिस, आई नो दैट मोर पर्टिकुलरली Those who have spent many years of active life in Calcutta or Bombay or Madras will be horror struck at the idea that the humanity they meet with there, whether in the bazaars or in the courts of justice or in so-called native society, should be able to teach us any lesson. अब वो कहते हैं कि मुझे पता है ये सुन के काफी लोग जो है वो सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और मुझे पता है सबसे ज्यादा उन लोगों को आश्चर्य होगा जो कि कलकत्ता बॉम्बे या मद्रास में रहते हैं, वो तो बिल्कुल ही अचंभवी हो जाएंगे क्योंकि वहां जब वो जिस ह्यूमैनिटी से मिलते हैं, जिस मानवता से मिलते हैं, वहाँ के बाजारों में या वहाँ के कोर्ट में या वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के समाज में, वो भला किसी और को कैसे कोई लेसन सिखा सकती है, कोई पाठ पढ़ा सकती है। फिर आगे वो लिखते हैं, लेट मी देयरफॉर एक्सप्लेन एट वंस टू माय फ्रेंड्स हु मे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर इयर्स एज सिविल सर्वेंट्स और ऑफिसर्स और मिशनरीज और मर्चेंट्स एंड हु ऑट टू नो अ ग्रेट डील मोर ऑफ दैट कंट्री देन वन हु हैज नेवर सेट फुट ऑन द सॉइल ऑफ आर्यवर्ता दैट वी आर स्पीकिंग ऑफ टू वेरी डिफरेंट इंडियाज। अब मैक्स मिलर कहते हैं कि मैं, जिसने कि आज तक कभी भारत देश पे कोई कदम तक नहीं रखा है, जो भारत गया भी नहीं हूँ, वो वहां के रहने वाले मेरे दोस्तों को जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं या ऑफिसर्स हैं या मिशनरीज हैं या फिर मर्चेंट्स यानी बिजनेसमैन हैं, उनको बताऊंगा कि कैसे भला भारत देश का जो साहित्य है वो दूसरे देशों को कैसे पाठ पढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आई एम थिंकिंग चीफली ऑफ इंडिया सच एज इट वॉज 1,000, 2,000, इट मे बी 3,000 ईयर्स अगो, दे थिंक ऑफ द इंडिया ऑफ टूडे। अब वो कहते हैं कि मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जो आज से 1,000 या 2,000 या 3,000 साल पहले था। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आर्यवर्ता क्या है, तो वो हिंदुस्तान का, भारत का बहुत ही एंशियंट नेम था आर्यवर्ता, जो कि यहाँ रहने वाले आर्यंस लोगों के ऊपर बना था। अब आगे बढ़ते हैं, एंड अगेन व्हेन थिंकिंग ऑफ इंडिया ऑफ टूडे दे रिमेम्बर चीफली द इंडिया ऑफ कलकत्ता मद्रास द इंडिया ऑफ द टाउन्स, आई लुक टू द इंडिया ऑफ विलेजेस कम्युनिटीज द ट्रू इंडिया ऑफ द इंडियंस। अब फिर वो कहते हैं, और अगर आज के भारत के बारे में भी सोचें तो लोग ख्याल करते हैं कलकत्ता का, मद्रास का और बाकी शहरों का, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इन भारत के गांवों का जहाँ पे असली हिंदुस्तानी बसते हैं, जहाँ असली हिंदुस्तानी रहते हैं। अगले पैराग्राफ में बढ़ते हुए, व्हाट आई विश टू शो यू, आई मीन मोर स्पेशली द कैंडिडेट्स फॉर द इंडियन सिविल सर्विस is that this India of 1,000, 2,000 or 3,000 years ago, the India of today also, if only you know where to look for it, is full of problems, the solution of which concerns all of us, even us in the Europe of the 19th century. अब इसमें वो कहते हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं स्पेशली, एक तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को ये बता रहा हूँ कि आज से 1,000, 2,000 या 3,000 साल पहले, या सिर्फ वही नहीं, आज का भी जो इंडिया है वो काफी सारी दिक्कतों से जूझता है और उसके साथ साथ उसका हल भी निकालता है। और ये जो दिक्कतें और ये जो हल है, ये सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, बल्कि हम वो लोग जो कि यूरोप में रह रहे हैं, मैक्स मिलर कहते हैं जो 19th सेंचुरी के यूरोप में रह रहे हैं, उनको भी कंसर्न करता है, उनसे भी रिलेटेड है। अब अगले पैराग्राफ में बढ़ते हैं, इफ यू हैव एक्वायर्ड एनी स्पेशल टेस्ट हेयर इन इंग्लैंड यू विल फाइंड प्लेंटी टू सेटिस्फाई देम इन इंडिया एंड हूएवर हैज लर्न टू टेक एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स दैट ऑक्यूपाई द बेस्ट थिंकर्स एंड वर्कर्स एट होम नीड सर्टेनली नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ इंडिया प्रूविंग टू हिम एन इंटेलेक्चुअल एग्जाइल। अब वो कहते हैं कि अगर किसी को इंग्लैंड का कुछ खास लगा हो, कुछ स्पेशल लगा हो, कुछ स्पेशल टेस्ट मिला हो, तो ऐसी चीजें भारत में तो भरी पड़ी हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं या भारत के जो निवासी हैं, वो जिस तरह से अपनी दिक्कतों को सॉल्व करते हैं, अपनी दिक्कतों का हल निकालते हैं, वो तो बहुत ही अलग ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपना सोल्यूशन निकालते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब बहुत ही बुद्धि के साथ। और फिर वो आगे कहते हैं कि इफ यू केयर फॉर जियोलॉजी देयर इज वर्क फॉर यू फ्रॉम द हिमालयस टू सेलोन, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ बॉटनी देयर इज अ फ्लोरा रिच इनफ फॉर मेनी हुकर्स, इफ यू आर अ जूलॉजिस्ट थिंक ऑफ हेकेल हु इज जस्ट नाउ रशिंग through Indian forests and dredging in Indian seas, and to whom his stay in India is like the realization of the brightest dream of his life. अब वो कहते हैं कि अगर किसी को जियोलॉजी पसंद है तो उसके लिए हिमालय से लेके सेलोन हर जगह तक काम है. सेलोन एक जगह है श्रीलंका में. और फिर वो कहते हैं अगर किसी को बॉटनी पसंद है यानी वनस्पति विज्ञान, आसान शब्दों में जो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ जो साइंस होता है, जो विज्ञान होता है वो, तो अगर वो किसी को पसंद है तो बहुत तरह के फ्लोरा भी मिल जाएंगे यानी पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे यहाँ पे. और फिर आगे लिखा है If you are a zoologist, think of Haeckel. अब यहाँ पे Ernest Haeckel की बात हो रही है, who is just now rushing through Indian forests and dredging in Indian seas, and to whom his stay in India is like the realization of his of the brightest dream of his life. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ अगर आप एक zoologist है तो फिर आप Ernest Haeckel के बारे में सोचिए, जो कि फिलहाल Indian forests में घूम रहे हैं, इसे भाग रहे हैं, वहाँ सब नज़ारे वगैरह की तलाशी ले रहे हैं, फॉरेस्ट की जंगल की तलाशी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जंगल के साथ साथ इंडियन सीज में भी वो जा रहे हैं और देख रहे हैं, और उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि यही तो उनकी जिंदगी का सबसे ब्राइटेस्ट सपना रहा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एथनोलॉजी, एथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान, यानी तरह तरह के लोगों के बारे में पढ़ना और देखना कि वो अपने आपसी संबंध को कैसे बना के रखते हैं, कैसे अपने आपसी संबंध को कैसे मेंटेन करते हैं. तो उन्होंने लिखा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एथनोलॉजी व्हाई इंडिया इज लाइक अ लिविंग एथनोलॉजिकल म्यूजियम. तो अगर आपको एथनोलॉजी पसंद है तो जो भारत देश है वो तो एक जीता जागता एथनोलॉजिकल म्यूजियम ही है. म्यूजियम मतलब संग्रहालय. अब आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व. तो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, इफ यू हैव एवर असिस्टेड एट द ओपनिंग ऑफ अ बैरो इन इंग्लैंड एंड नो द डिलाइट ऑफ फाइंडिंग अ फिबुला और अ नाइफ और अ फ्लिंट इन अ हीप ऑफ रविश रेड, ओनली जनरल कनिंगहम एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यू विल बी इम्पेशेंट फॉर द टाइम व्हेन यू कैन टेक योर स्पेड एंड ब्रिंग टू लाइट द एंशिएंट विहारास और कॉलेजेस बिल्ट बाय द बुद्धिस्ट मोनार्क्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ वो कहते हैं कि अगर किसी को मानव जाति का इतिहास पढ़ना पसंद है और उनके जो रिमेन्स वगैरह हैं, यानी कहीं गड्ढा खोद के ढूंढ के पुराने जमाने के नाइस या चाकू तलवार जो निकलती हैं, वो सब ढूंढना, वो सब उनके बारे में पढ़ना पसंद है, तो भी इंडिया उसके लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट से लेके जो पुराने पुराने एंशियंट विहारास हैं तो उन सब में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं. If ever you amuse yourself with collecting coins, why the soil of India teems with coins? Persian, Canaan, Thracian, Parthian, Greek, Macedonian, Roman and Mohammedan. When Warren Hastings was Governor General, an earthen pot was found on the bank of a river in the province of Banaras containing 172 gold coins. Ab wo kehte hain ki agar koi insaan कॉइन्स कलेक्ट करने में, सिक्के जमा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसको सिक्के जमा करना पसंद है, तो भी भारत उसके लिए एक बहुत बढ़िया देश है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के सिक्के मिलते हैं, चाहे वो पर्सियन हो, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो थ्रेशियन हो, चाहे वो पार्थियन हो, चाहे वो ग्रीक हो, रोमन हो, मैकडोनियन हो या फिर मोहम्मदेन हो, हर तरह के सिक्के मिल जाते हैं. और इसके साथ वो कहते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल थे तो उन्हें एक अर्दन पॉट, एक पुराना पॉट मिला था बनारस में रिवर के किनारे, जिसमें कि 172 सोने के सिक्के मिले थे. वॉरेन हेस्टिंग्स कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज मेकिंग द मोस्ट मुनिफिशेंट प्रेजेंट टू हिज मास्टर्स दैट ही माइट एवर हैव इट इन हिज पावर्स टू सेंड देम बाय प्रेजेंटिंग दोज एंशिएंट कॉइंस टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. द स्टोरी इज दैट दे वर सेंट टू द मेल्टिंग पॉट, एट ऑल इवेंट दे हैड डिसअपीयर्ड. वॉरेन हेस्टिंग्स रिटर्न टू इंग्लैंड. अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स को ये सिक्के मिले थे तो उन्होंने अपने आप को सबसे उदार व्यक्ति समझते हुए, मुनिफिशियन मतलब उदार व्यक्ति समझते हुए, अपने मास्टर्स को ये सोने के सिक्के भिजवाए थे, उनको ये दिए थे ताकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आगे ये सिक्के रखे जा सके. हालांकि कहानी कुछ ऐसी है कि इन सिक्कों को पिघला दिया गया था और जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचे थे तब तक ये सिक्के गायब हो चुके थे. The study of mythology has assumed an entirely new character, chiefly owing to the light that has been thrown on it by the ancient Vedic mythology of India. But though the foundation of a true science of mythology has been laid, all the detail has still to be worked out and could be worked out nowhere better than in India. अब यहाँ पे वो मिथोलॉजी की बात करते हैं. मिथोलॉजी यानी पौराणिक कथा. यानी कि तरह तरह के जो मिथ होते हैं, जो काल्पित कथाएं होती है, उनको पढ़ना, उनको समझना और उनका ओरिजिन जानना कि आखिर वो शुरू कैसे हुए और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो अगर ये सब पढ़ना और ये सब जानना किसी को पसंद है तो उसके लिए भी भारत एक बहुत ही खास देश हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो वैदिक मैथोलॉजी है, जो वैदिक पुराण है हमारे यहाँ की, वो सब इन चीजों का फाउंडेशन है, इन चीजों का बेस है, यहीं से तो ये सारी चीजें शुरुआत हुई हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदुइज्म है, वो पूरे दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ की मिथोलॉजी भी उतनी पुरानी होगी। तो अगर किसी को मिथोलॉजी पसंद है, इन सब चीजों काल्पनिक चीजों पे जांच करना और उनको समझना पसंद है, तो उसके लिए भी भारत देश बहुत ही बेहतरीन देश हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए, इवन द स्टडी ऑफ फेबल्स ओज इट्स न्यू लाइफ टू इंडिया फ्रॉम व्हेंस द वेरियस माइग्रेशन ऑफ फेबल्स हैव बीन ट्रेस्ड एट वेरियस टाइम्स एंड थ्रू वेरियस चैनल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बुद्धिज्म इज नाउ नोन टू हैव द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ आर लेजेंड्स एंड पैराबल्स बट हेयर टू मेनी प्रॉब्लम स्टिल वेट फॉर द सोल्यूशन। अब यहाँ पे फेबल्स की बात हो रही है। फेबल्स मतलब दंत कथाएं, यानी कि जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं, जैसे कि खरगोश और कछुए की आपने पढ़ी होगी, वो सब भी हमारे देश में हर जगह पाई जाती हैं और बहुत सारे फेबल्स हमारे देश में बने हुए हैं, ओरिजिन हुआ है जिनका, जिनका शुरुआत हुआ है हमारे देश में। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है, जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, वो भी ऐसे ही फेबल से भरा पड़ा है और उसमें भी ऐसी कई सारी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां भरी पड़ी हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो आज के डेट में दूसरे देशों में मेन सोर्स रह चुका है, फेबल्स का सबसे अहम जरिया रह चुका है फेबल्स का। लेकिन अब इसमें भी कहते हैं कि इसमें भी कई सारे मुश्किलें हैं जिनका की सोल्यूशन, जिनका की हल अभी ढूंढना बाकी है। फिर वो लिखते हैं, थिंक फॉर इंस्टेंस ऑफ द एल्यूजन ऑफ द फेबल ऑफ द डोंकी इन द लायन स्किन व्हिच अकर्स इन प्लेटो वाज दैट बोरोड फ्रॉम द ईस्ट और टेक द फेबल ऑफ द वीजल चेंज बाय एफ्रोडाइट इनटू अ वुमन हु व्हेन शी सॉ माउस could not refrain from making a spring at it. This too is very like a Sanskrit fable, but how then could have been brought into Greece early enough to appear in one of its comedies about 400 BC? Here too, there is still plenty of work to do. अब यहाँ वो कहते हैं कि जो प्लेटो की कहानियां हैं, चाहे वो गधे और शेर की हो या फिर एफ्रोडाइट और चूहे की हो, एफ्रोडाइट एक ग्रीक गॉडेस का नाम है, एक ग्रीक भगवान का नाम है जो कि बहुत ही सुंदर है और उनको उसी सुंदरता और प्यार के लिए जाना जाता है। लेकिन एक कहानी में वो भी जब एक चूहे को देखती हैं तो अपने आप को रोक नहीं सकती हैं उस चूहे पे कूदने से। तो मैक्स मिलर कहते हैं कि ये सब कहानियां जो है वो संस्कृत की कहानियों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। और फिर वो पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि भला उतने जमाने पहले क्या जो ग्रीस माइथोलॉजी है, जो ग्रीक की जो छोटी छोटी कहानियां हैं, वो ये संस्कृत कहानियों से ही ली गई थी, जो कि अराउंड 400 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में ही ली गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, वी मे गो बैक इवन फर्दर इनटू एंटीक्विटी एंड स्टिल फाइंड स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस बिटवीन द लेजेंड्स ऑफ इंडिया एंड द लेजेंड्स ऑफ द वेस्ट विदाउट एज येट बीइंग एबल टू से हाउ दे ट्रैवल्ड वेदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। अब वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे काफी सारे लेजेंड्स हैं, ऐसी काफी सारी कहानियां हैं, एपिक्स हैं, जो कि वेस्ट में और ईस्ट में, मतलब भारत देश में और उधर, बहुत ज्यादा जिनमें सम्मानता है। और वो पूछते हैं भला ये आखिर ट्रैवल कैसे हुई थी, इधर से उधर हुई कैसी थी, और क्या ये वेस्ट से ईस्ट में आई थी या ईस्ट से वेस्ट गई थी, मतलब वहां से ये हमारे यहाँ आई थी या फिर हमारे यहाँ से ये वहां गई थी। दैट एट द टाइम ऑफ सोलोमन देयर वाज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन इंडिया एंड सीरिया एंड पैलेस्टाइन इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट I believe by certain Sanskrit word which occur in the Bible as names of articles of export from Ophir, articles such as ivory, apes, peacocks and sandalwood which taken together could not have been exported from any other country but India. अब वो कहते हैं कि उतने पुराने जमाने में ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया और सीरिया के बीच में किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट हुआ होगा, कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि वहाँ की जो बाइबल है उसमें भी काफी सारे संस्कृत वर्ड्स हैं या संस्कृत वर्ड पे आर्टिकल्स बने हुए हैं, जैसे कि सैंडलवुड, एप्स, पीकॉक, ये सब संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। और उन्हें लगता है कि मतलब अगर ये सब संस्कृत के हैं तो इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली इंडिया में ही हुआ होगा, किसी और देश में नहीं। Nor is there any reason to suppose that the commercial intercourse between India, the Persian Gulf, the Red Sea and the Mediterranean was ever completely interrupted, even at a time when the Book of Kings is supposed to have been written. अब वो कहते हैं कि ऐसा भी हम नहीं मान सकते कि जब Books of Kings लिखी गई थी उस समय इंडिया, पर्शियन गल्फ, रेड सी या मेडिटेरियन के बीच में कोई कम्युनिकेशन इंटरप्ट किया गया होगा। Many of you may have studied not only languages but also the science of languages. अब वो कहते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ भाषा ही नहीं पढ़ी है बल्कि भाषा के पीछे छुपे विज्ञान को भी पढ़ा है। And is there any country in which some of the most important problems of that science, say only the growth and decay of dialects or the possible mixture of languages with regard not only to words but to grammatical elements also can be studied to greater advantages than among the Aryans, the Dravidians and the Munda inhabitants of India when brought in contact with their various invaders and conquerors, the Greeks, the Arabs, the Persians, the Mughals and lastly the English? अब वो कहते हैं कि क्या भला कोई और ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हो और भाषा तो भाषा, शब्दों के साथ में वहाँ के ग्रामर में भी डिफरेंस हो, वहाँ के व्याकरण में भी अंतर हो। वो कहते हैं कि ऐसा सिर्फ भारत देश में ही हो सकता है। और फिर वो ये भी कहते हैं यहाँ पे इतने सारे इन्वेडर्स रह चुके हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे रूल करके गए हैं, चाहे वो शुरुआत हो आर्यन से, ड्रविडियन से या फिर मुंडा इनहेबिटेंट्स जो थे उनसे, या फिर जो ग्रीक्स, अरब, पर्शियंस और फिर जो मुगल्स का भी राज यहाँ चला था, और लास्टली जो कॉलोनियल रूल किया था जो इंग्लिश लोग आए थे, जो ब्रिटिश लोग आए थे, उन सब का यहाँ आना, उन सब के भी भाषा से हमारे यहाँ और भाषा जुड़ती ही गई और भाषाएं हम सीखते गई। तो भारत देश में फिलहाल तो अगर हर एक जगह की छोटी छोटी भाषाएं मिलाया जाए तो 10,000 से भी ज्यादा भाषाएं निकल आएंगी। फिर आगे बढ़ते हुए, Again, if you are a student of jurisprudence, there is a history of law to be explored in India, very different from what is known of the history of law in Greece, in Rome and in Germany, yet both by its contrast and by its similarities full of suggestions to the student of comparative jurisprudence, new materials are being discovered every year. अब वो कहते हैं कि अगर कोई विधि शास्त्र का स्टूडेंट है, विधि शास्त्र का छात्र यानी कोई लॉ से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है, तो भारत में लॉ से भी जुड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है जो कि ग्रीस या रोम या जर्मनी की हिस्ट्री से बहुत ही अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी उनमें कई सिमिलैरिटीज भी हैं और हर साल नई नई सिमिलैरिटीज और नए नए मटेरियल्स लॉ के डिस्कवर होते ही जाते हैं, खोजे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हुए, If you have learned to appreciate the value of recent researches into the antecedents of all law, namely the foundation and growth of the simplest political communities, and nowhere could you have had better opportunities for it than here at Cambridge, you will find a field of observation open before you in the still existing village estates in India that will imply repay careful research. अब वो कहते हैं कि अगर किसी ने researches को यानी खोज को सराहना सीखा है एंटीसीडेंट्स ऑफ लॉ में, या एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है पिछला जन्म या पिछला जीवन, तो उसका भी जो फाउंडेशन है, जो बेस है यानी जो आधार है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज में से ज्यादा अच्छा जो भारत देश के जो विलेजेस है, जो गांव है, उनमें मिल जाएगा। अगर कोई अच्छे से रिसर्च करना चाहे तो, अगर कोई अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना चाहे तो, निरीक्षण करना चाहे तो। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड टेक दैट विच आफ्टर ऑल वेदर वी कन्फेस और डिनाई इट वी केयर फॉर मोर इन दिस लाइफ देन फॉर एनीथिंग एल्स ना विच इज ऑफन फार मोर केयर्ड फॉर बाय दोज हु डिनाई देन बाय दोज हु कन्फेस टेक दैट विच सपोर्ट्स परवेड्स एंड डायरेक्ट्स आवर एक्ट्स थॉट्स एंड होप्स विदाउट विच देयर कैन बी नीदर विलेज कम्युनिटी नॉर एम्पायर नीदर कस्टम नॉर लॉ नीदर राइट नॉर रॉन्ग Take that which natural language has most firmly fixed the specific and permanent barrier between man and beast, which alone has made life possible and bearable, and which, as it is, द डीपेस्ट दो ऑफन हिडन स्प्रिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ऑल नेशनल लाइफ द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्ट्रीज एंड येट द मिस्ट्री ऑफ ऑल मिस्ट्रीज टेक रिलीजन एंड वेयर कैन यू स्टडी इट्स ट्रू ओरिजिन इट्स नेचुरल ग्रोथ एंड इट्स इनएविटेबल डीके बेटर दैन इन इंडिया द होम ऑफ ब्रह्मनिज्म द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड द रिफ्यूजी ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म इवन नाउ द मदर ऑफ न्यू सुपरस्टिशंस एंड व्हाई नॉट In the future, the regenerate child of the purest faith, if only purified from the dust of 19th century. अब वो कहते हैं कि भले ही हम confess करें या deny करें, यानी मंजूर करें या मुकर जाएं, हम जो हैं अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं किसी और चीज के मुकाबले और जो लोग इस चीज से मुकरेंगे वो असलियत में उनसे भी ज्यादा जो कन्फेस कर रहे हैं जो मान रहे हैं उनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं अपनी जिंदगी से जितना कि कन्फेस करने वाले नहीं करते उतना डिनाई करने वाले करते हैं यानी जितना मान जाने वाले नहीं करते उतना मुकरने वाले करते हैं ऐसा मैक्स मुलर का कहना है और वो कहते हैं कि यही वो चीज है जो कि हमारे ख्यालों को हमारे सोच को हमारी उम्मीदों को और हमारे एक्शंस को यानी हरकतों को डायरेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं यानी दिशा दिखाती हैं और सहयोग करती हैं और वो कहते हैं कि इन सब चीजों के बगैर ना तो कोई गांव हो सकता है ना कोई शहर हो सकता है ना कोई एम्पायर हो सकता है ना ही कोई लॉ हो सकता है ना ही कुछ सही हो सकता है ना ही कुछ गलत हो सकता है और वो कहते हैं कि भाषा के बाद सबसे बड़ा जो बैरियर है जो दरार है वो मैन और बीस्ट के बीच में है यानी इंसान और दानव के बीच में है जिसने की जिंदगी को जीना और बेरेबल बनाया है बेरेबल मतलब सहने लायक बनाया है और यही सब जिंदगी से जो रिलेटेड चीजें हैं जो जिंदगी से संबंधित चीजें हैं वो एक व्यक्ति के सबसे डीपेस्ट थॉट्स में छुपी हुई होती हैं एक व्यक्ति के सबसे अंदर गहराई में दबी हुई होती हैं और वो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि जन्मभूमि है ब्रह्मनिज्म की बुद्धिज्म की और जो रिफ्यूजी है जोरोस्ट्रियनिज्म यानी जिन्होंने जोरोस्ट्रियनिज्म का शरण ले रखा है यानी जो पारसियों के शरण में है उन सबकी जन्मभूमि जो है भारत ही है क्योंकि ये सब चीजें यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं यहीं से शुरू हुई हैं अब आगे बढ़ते हैं यू विल फाइंड योर सेल्फ एवरीवेयर बिटवीन एन इमेंस पास्ट एंड एन इमेंस फ्यूचर विद अपॉर्चुनिटीज सच एज द ओल्ड वर्ल्ड कुड बी सेल्डम इफ एवर ऑफर यू टेक एनी ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ द डे पॉपुलर एजुकेशन हायर एजुकेशन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कोडिफिकेशन ऑफ लॉज फाइनेंस इमिग्रेशन पुअर लॉ And whether you have anything to teach and to try or anything to be observed and to learn, India will supply you with a laboratory such as exists nowhere else. अब वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को भारत में हर जगह ढूंढ सकता है क्योंकि यहाँ का जो पास्ट है और जो फ्यूचर वो बहुत ही गहरा है बहुत ही बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है यहाँ पे यानी अवसरों की कमी नहीं है यहाँ पे चाहे वो पॉपुलर एडुकेशन हो या फिर हायर एडुकेशन हो या फिर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन हो या फिर लॉ हो फाइनेंस इमिग्रेशन कुछ भी हो सब चीज मौजूद है यहाँ अगर किसी भी चीज के ऊपर किसी व्यक्ति को पढ़ना है या ऑब्जर्व करना है तो वो भारत देश आ सकता है क्योंकि भारत एक ऐसी लैबोरेटरी है जहाँ हर चीज मिल जाएगी ऐसी प्रयोगशाला है भारत जहाँ हर चीज मिल जाएगी या हर चीज ढूंढी जा सकती है That very Sanskrit, the study of which may at first seem so tedious to you and so useless, if only you will carry it on, as you may carry it on here at Cambridge better than anywhere else, will open before you large layers of literature as yet almost unknown and unexplored and allow you an insight into strata of thought deeper than any you have known before and rich in lessons that appeal to the deepest sympathies of the human heart. अब वो यहाँ संस्कृत भाषा की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत को पढ़ना शुरू करेगा तो शुरुआत में हो सकता है कि बहुत मुश्किल लगे और ये भी लगे कि भला पढ़ना ही क्यों है पर जैसे जैसे वो उसे पढ़ता जाएगा जो कि उसे पढ़ना चाहिए और वो कहते हैं कैम्ब्रिज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है संस्कृत की कहीं और से भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है संस्कृत की तो उसे पता चलेगा कि ये एक स्तर है थॉट का सोच का बहुत ही गहराई में यहाँ पे संस्कृत में सब दिया हुआ है और लिटरेचर जो है जो साहित्य है वो संस्कृत में बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है बहुत तरह के साहित्य केवल संस्कृत भाषा में मिले जा सकते हैं संस्कृत का जो साहित्य है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखा है और संस्कृत भाषा को पढ़ने से ऐसी ऐसी चीजों का पता चलेगा जो कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी जिसके बारे में सुनने को नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हुए, यू नो हाउ सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट एंड द नोबलेस्ट जीनियस ऑफ आर एज हैज बीन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आउटवर्ड और मटेरियल वर्ल्ड, द ग्रोथ ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लिविंग सेल्स, देयर कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंशिएशन लीडिंग अप टू द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ एंड इट्स स्टेडी प्रोग्रेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट स्टेजेस। अब वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं, कई होनहार मशहूर लोग हैं, जीनियस लोग हैं, बहुत ही समझदार बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है डेवलपमेंट को लेकर, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको लेकर, अर्थ की ग्रोथ को लेकर, अर्थ की जो तरक्की है उसको लेकर, जो पहला अपीयरेंस होता है लिविंग सेल्स का बायोलॉजिकल वे में, जो लिविंग सेल्स है उन सबको लेकर, उन सबके कॉम्बिनेशन और ऑर्गेनिक लाइफ को लेकर सबने कितनी ही पढ़ाई करी है नीचे से ऊपर जाने वाले सारे स्टेजेस तक। फिर वो आगे कहते हैं, इज देयर नॉट एन इनवर्ड इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड आल्सो व्हिच हैज टू बी स्टडीड इन इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ predicative and demonstrative roots, their combination and differentiation leading up to the beginning of rational thought in its steady progress from the lowest to the highest stages. And in that study of the history of human mind, in the study of ourselves, our true selves, India occupies a place second to no other country. Whatever sphere of the human minds you may select for your special study, whether it be language or religion or mythology, philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India only. अब वो भारत के बारे में काफी तारीफ करते हुए काफी कुछ कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ह्यूमन माइंड यानी इंसान की बुद्धि के ऊपर पढ़ाई करनी हो, सोच के ऊपर पढ़ाई करनी हो, या भाषा के ऊपर पढ़ाई करनी हो, या फिर उसके धर्म, उसके रिलीजन की पढ़ाई करनी हो, या फिर मिथोलॉजी की पढ़ाई करनी हो, जो काल्पनिक कहानियां हैं उनकी पढ़ाई करनी हो, या फिर फिलॉसफी की पढ़ाई करनी हो, या लॉ की पढ़ाई क्यों ना करनी हो, या फिर आर्ट की पढ़ाई करनी हो, या साइंस की पढ़ाई करनी हो, विज्ञान की पढ़ाई करनी हो, तो हर चीज के लिए एक व्यक्ति को इसमें से किसी की भी पढ़ाई करने के लिए भारत आने की बहुत आवश्यकता है। भले आपको पसंद आए ना आए, लेकिन यहाँ भारत में कई सारी ऐसी वैल्यूएबल और इंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स मिल जाएंगे, भारत की हिस्ट्री में ऐसे इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स मिल जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल जाएगी यहाँ के इतिहास में जो कि और कहीं नहीं मिल सकती, केवल भारत में ही मिल सकती है। एंड व्हाइल दस ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू दोस whose lot will soon be cast in India, the true position which that wonderful country holds or ought to hold in universal history, I may perhaps be able at the same time to appeal to the sympathies of order of other members of this university by showing them how imperfect our knowledge of universal history, our insight into the development of the human intellect must always remain if we narrow our horizon to the history of Greeks and Romans, Saxons and Celts with a dim background of Palestine, Egypt, Babylon and leave out of sight our near intellectual relatives, the Aryans of India, the farmers of the most wonderful language, the Sanskrit, the fellow workers in the construction of our fundamental concepts, the fathers of the most natural of natural religions, the makers of the most transparent mythologies, the inventors of the most subtle philosophy and the givers of the most elaborate laws. अब यहाँ वो भारत की तारीफ करते हुए, भारत के बारे में बताते हुए अपने यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं उनसे कहते हैं, उनके यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उनकी नॉलेज आधी अधूरी ही है, उनकी जो नॉलेज है वो ग्रीक्स और रोमन्स, सैक्सन्स और सेल्ट्स तक ही बनी हुई है, और अगर इसके आगे की जानकारी इन्हें लेनी है, अगर ये नॉलेज इन्हें बढ़ानी है, तो इन्हें इंडिया आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया के जो आर्यंस जो रह चुके हैं, जो फार्मर्स हैं, या फिर यहाँ की जो इतनी सारी वंडरफुल भाषाएं हैं, जो आश्चर्यजनक भाषाएं हैं, और जो मिथोलॉजीज, फिलोसफी और जो लॉ है, वही सब लोगों की नॉलेज को पूरा कर सकता है, पूरा तरह से इंटेलेक्चुअल या बुद्धिवान बना सकता है। और फिर वो यही कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ह्यूमन माइंड्स यानी इंसानी दिमाग कैसे चलता है, कैसे समझता है, कैसे सोचता है, इन सब चीजों के लिए जानना है, इन सब चीजों के लिए की खोज करनी है, तो इसके लिए इंडिया जो है, भारत जो है, वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है, सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर व्हाट इंडिया टीचेस अस ने हमने मैक्स मुलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और वो बाकी लोगों को भारत के बारे में क्या बताना चाहते हैं और किन किन तरह से हमारा जो देश है भारत वो एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही बेहतरीन देश है। अब इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइजेस है वो हम अगली ऑडियो में करेंगे, अगली ऑडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।